पृष्ठ संख्या 104, अध्याय 9। कमरे के बीचों बीच दो खाटें जोड़कर बिछाई गई थीं और उन पर फीके हरे रंग के पलंग पोस बिछे थे। ईंटों के मटमैले फर्श पर जगह जगह मिट्टी जमी थी। लगता था कमरा मुद्दत बाद खोला गया है और जल्दी में साफ किया गया है। सजावट के नाम पर कमरे में कुछ भी नहीं था। हाँ, एक दीवार पर कैलेंडर में से फाड़ कर निकाली हुई एक तस्वीर टंगी थी, जिसमें लंबे लंबे कानों वाला एक कुत्ता पेड़ के तने पृष्ठ संख्या 105 के पास जीभ निकाले बैठा था। चारपाइयों के पीछे एक तिपाई रखी थी, मगर उस पर कोई कपड़ा नहीं बिछा था। बरसाती के तीनों दरवाजे खुले थे, जिससे ठंडी हवा साय साय करती अंदर आ रही थी। दरवाजों और खिड़कियों पर वर्षों से रोगन नहीं किया गया था। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर प्रमिला कमरे में पहुँची। कमरा सिगरेटों के धुएं से अटा था। कुछ दिन पहले प्रमिला महेंद्र की बहन के घर जा पहुँची थी। प्रमिला की हालत देखकर पहले तो बहन को स्वाभाविक सा संतोष हुआ था। भाई जिस औरत को पसंद न करे, उसे भाई की बहन कैसे पसंद कर सकती थी। शादी से पहले बहन को प्रमिला में सभी गुण नजर आए थे। भाई ने मुंह फेर लिया तो प्रमिला में उसे दोष ही दोष नजर आने लगे। इससे भी ज्यादा रौंदी हुई नजर आती तो भी बहन को संतोष ही होता, पर बहन दूरदृष्टा थी। नहीं चाहती थी कि भाई का घर टूट जाए। प्रमिला के प्रति घृणा रहते हुए भी वह भाई के घर को बनाए रखने के हक में थी, इसलिए उसने प्रमिला को फटकारा नहीं। उसके मुंह पर दरवाजे का ताक बंद भी नहीं किया, बल्कि उसे अंदर बुला लिया। उसकी बात भी सुनी और अंत में यह कहकर कि तुम दोनों एक बार मिल लो और एक दूसरे से खुलकर बात कर लो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी। उसने उन दोनों के मिलने का इंतजाम महेंद्र के मित्र नाटे के घर में करवा दिया था कि महेंद्र और प्रमिला छत पर की बरसाती में एक रात रहें और जिसे जो कहना है कह ले, आगे वह जाने और उनका काम डॉट डॉट। कमरे के अंदर कदम रखते हुए प्रमिला को लगा जैसे ऐसा ही कोई कमरा उसने पहले भी कहीं देखा है, जिसके बीचों बीच दो पलंग जोड़कर बिछाए गए थे और दोनों के पीछे गोल सी तिपाई रखी थी। पर उस कमरे में तो जगह जगह फूलों के गजरे लटक रहे थे और हवा उनकी महक से बोझिल हो रही थी। तब वह यों अकेली कमरे में दाखिल भी नहीं हुई थी। 10 सहेलियां हंसती बतियाती उसे कमरे तक छोड़ने आई थीं। महेंद्र पहले से वहां मौजूद था और खुली खिड़की के दासे पर पैर रखे बाहर की ओर देखे जा रहा था। उसने काले रंग की पतलून और सफ़ेद कमीज पहन रखी थी और आस्तीनें चढ़ा रखी थीं। महेंद्र ने हाथ उठाकर सिगरेट का कश लिया। दहलीज पर खड़ी प्रमिला की नज़र उसकी कोहनियों के नीचे उग रहे घने बालों पर पड़ी। महेंद्र के शरीर पर, छाती, पीठ और टांगों पर असामान्य रूप से घने बाल थे, जिन्हें वह हंसी मजाक में अपने पौरुष की निशानी माना करता था। पृष्ठ संख्या 106। पिछले 2 दिन चाची ने और पिताजी ने बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया था, जिससे वह बहुत डगमगाई और घबराई थी। पर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे उसकी घबराहट कैसे दूर हो गई थी और एक क्लांत सी स्थिरता उसके मन में आ गई थी। महेंद्र घूम गया। शायद उसे प्रमिला के ऊंचा ऊंचा सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे गई थी। उसके घूम जाने पर प्रमिला सहसा विचलित सी हो उठी। पप्पू को नहीं लाए? दहलीज पर खड़े खड़े उसके मुंह से निकल गया। महेंद्र एकटक प्रमिला के चेहरे की ओर देख रहा था। यह उसकी पुरानी आदत थी, बोलने से पहले देर तक दूसरे आदमी के चेहरे की ओर एकटक देखता रहता था, यहाँ तक कि दूसरे आदमी को झेप होने लगती। आखिर उसने तनिक मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। पप्पू का यहाँ क्या काम था? बैठो, उसने कहा। प्रमिला नज़दीक वाली खाट पर पायदाने बैठ गई। यह किसका घर है? प्रमिला ने धीरे से पूछा। प्रमिला को देखकर महेंद्र को हल्का सा धक्का लगा। प्रमिला दुबला गई थी, उसके गाल पिचक गए थे और दांत कुछ कुछ बाहर को झांकने लगे थे। होठों के कोने नीचे की ओर ढलक गए से जान पड़ते थे। प्रमिला की आंखें भी खिंची खिंची सी थीं और उसमें हल्का सा अनछापन आ गया था। महेंद्र को निराशा हुई। उसे कभी कभी प्रमिला के गदराए शरीर की याद आया करती थी, विशेषकर जब वह धीमी चाल से एक कमरे से दूसरे कमरे में बिना चुन्नी ओढ़े आया जाया करती थी और महेंद्र को प्रमिला की गर्दन और कंधों का गठन बड़ा कमनीय लगा करता था। प्रमिला से अलग हो जाने के बावजूद वह प्रमिला को मन से नहीं निकाल पाया था। 12 साल का एक साथ का जीवन उसे सहसा मन से कैसे मिटाया जा सकता था। कभी मन में पछतावा उठता, कभी इस बात की खीज कि अलग हो जाने के बावजूद वह अलग नहीं हो पाया। यह मामला मन पर बोझ बना हुआ था, एक समस्या बनकर खड़ा हो गया है। उधर उसे तरह तरह की खबरें मिलती कि प्रमिला का पिता मामले को कचहरी में ले जाएगा। कचहरी में वह महीनों घिसटना नहीं चाहता था और ज्यादा लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता था। मन में क्षोभ उठता, खीज उठती, आत्म अनुकंपा का भाव उठता। मन ही मन उसने गांठ बांध ली थी कि प्रमिला रोए, गिड़गिड़ाए, कुछ भी कहे, वह दृढ़ बना रहेगा। दोबारा गृहस्थी चलाने का सवाल ही नहीं उठता। पर ऐसा निश्चय कर लेने से पृष्ठ संख्या 107 उसके मन का बोझ हल्का हो पाया हो ऐसा नहीं था। किम कर्तव्य विमूढ़ सा वह सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। कभी सोचता, मैं प्रमिला के साथ किस लहजे में बात करूं? औपचारिक ढंग से, जैसे एक अजनबी दूसरे अजनबी से करता है, या आत्मीयता से, जैसे मित्र संबंधी करते हैं? जिस भांति प्रमिला घर से निकाली गई थी, उसे याद करके कभी कभी उसका दिल बैठ जाता था। टांगे में गुमसुम बैठी वह अंत तक उसकी ओर देखती रही थी, लेकिन वह हिम्मत कर गया था और मोड़ काट कर टांगा आंखों से ओझल हो गया था। उस दिन को याद करके भी उसे बड़ा सूना सूना लगता था, जब प्रमिला नंगे पांव उसके पीछे पीछे भागती चली आई थी। मत जाओ, मत जाओ ना, कहती हुई, और पहली बार उसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ा था। क्षोभ, उत्कंठा, उपेक्षा, तरह तरह की भावनाएं उसके दिल को मसती थी। चाची के इसरार करने पर प्रमिला मुंगिया रंग की साड़ी पहनकर आई थी और माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर भी भरकर आई थी, पर इसके बावजूद उसके चेहरे पर रौनक नहीं आ पाई थी। प्रमिला के चेहरे पर जैसे धूल सी उड़ रही थी, बुझी बुझी औरत, शरीफ, घरेलू और बासी। महेंद्र ने मन ही मन कहा, तुम्हारे पिताजी सुना है मामला कचहरी में ले जाना चाहते हैं। अपनी झेप मिटाने के लिए महेंद्र ने खाट की पाटी पर बैठते हुए कहा। प्रमिला चुप रही, नजर नीचे किए फर्श की ओर देखती रही। कचहरी में जाना कोई अच्छी बात नहीं है, वह धीरे से बोली। प्रमिला की आवाज में भोलेपन की गूंज महेंद्र को बड़ी मुद्दत बाद सुनाई दी। आज वह उसे बुरी नहीं लगी। भीतर ही भीतर, दूर अंदर कहीं, महेंद्र को इस बात का भास हुआ कि इस औरत को जाल बिछाने के लिए भेजा गया है, मुझे फिर से गृहस्थी में फंसाने के लिए। मगर वह आश्वस्त था, यह जानते हुए कि जो जाल वह बिछाने आई है वह स्वयं चिथड़े चिथड़े होता जा रहा है। तभी उसकी नज़र प्रमिला के पैरों पर पड़ी। मुंगिया रंग की साड़ी के नीचे प्रमिला के पैरों पर धूल जमी थी, एड़ियाँ मैल से काली पड़ गई थीं और उन पर दरारें पड़ गई थीं। पैरों की उंगलियों के नाखून चपटे और उंगलियों के बीच का अंतर बढ़ा हुआ लग रहा था। पैर बड़े भौंडे लग रहे थे। प्रमिला के शरीर का सर्वेक्षण करती हुई महेंद्र की आंखें प्रमिला की आंखों से मिली। उनमें ऐंचापन आ गया था, ऐंचापन भी और गंदलापन भी, जैसा बीड़ी पीने वालों की आंखों में आ जाता है। आंखें खिंची खिंची थीं, जैसी पहले दिनों घर में कला होने के बाद हो। पृष्ठ संख्या 108 जाया करती थीं। यों तो प्रमिला बन ठन कर आई थी, पर बात बनी नहीं। बालों की लटें अभी से उखड़ कर माथे पर झूलने लगी थी। महेंद्र का मन हुआ वर्षों पहले की तरह हाथ उठाकर लटों को बालों में खोंस दे, पर वह निश्चेष्ट सा बैठा रहा। मुंह हाथ धोना चाहती हो? यहीं पीछे गुसल खाना है, बेशक चली जाओ। प्रमिला चुपचाप उठी और बगल वाले कमरे में चली गई। महेंद्र देर तक खाट पर बैठा रहा, फिर एक और सिगरेट सुलगा कर खिड़की पर आ गया और बाहर झांकने लगा। बाहर नीचे रेलवे यार्ड था, खंभों पर जगह जगह दूर तक रोशनी के कुमकुमे जल रहे थे और उनके नीचे रेल की दर्जनों लाइनें एक के पीछे एक दूर तक बिछी थीं। खंभों के कुमकुमों की रोशनी के नीचे वह जगह जगह से सफेद लौ देती जान पड़ रही थी। बाईं ओर संट करते किसी इंजन में से भाप की सफेद गठरियां सी निकल रही थीं। कोई आदमी जो शायद लाइनमैन रहा होगा, लाल हरा लैंप हाथ में झुलाता हुआ यार्ड में खड़ी किसी गाड़ी के साथ साथ चलता जा रहा था। बहुत ही बौना लग रहा था वह अल्प मानवबिंदु सा। अंधेरे में केवल उसके चलते पांव नजर आ रहे थे, जो लैंप में से छिटकती रोशनी को रौंदते चले जा रहे थे, और रोशनी बार बार उसके पांवों से लिपटती जा रही थी। दाईं ओर दूर, बहुत दूर, अनेक ऊंचे ऊंचे खंभों पर सिग्नलों की लाल और हरी बत्तियां चमक रही थीं। महेंद्र की आंखें फिर सामने की ओर लौट आईं। लाइनमैन लैंप हाथ में झुलाता अब रेल की पटरियां पार करता यार्ड के दूसरी ओर जाने लगा था। लगता था अंधेरे में लैंप की रोशनी से रास्ता काटता चला जा रहा है। बहुत से कश लगा चुकने के बाद महेंद्र ने सिगरेट का टुकड़ा खिड़की के दासे पर मसल दिया और खिड़की की छड़ पर कोहनियाँ टिकाए फिर बाहर देखता रहा। प्रमिला साड़ी के पल्लू से हाथ मुंह पोंछती हुई गुसलखाने में से निकलकर आई और पैर धोने का उसे ख्याल नहीं आया था। महेंद्र ने मुड़कर देखा, साड़ी से मुंह क्यों पोंछ रही हो? क्या वहाँ तौलिया नहीं टंगा था? वहाँ एक ही तौलिया टंगा था, वह तुम्हारा रहा होगा ना। तुम नहीं चाहते कोई दूसरा आदमी तुम्हारा तौलिया इस्तेमाल करे। और मुंह पोंछती हुई प्रमिला फिर खाट पर बैठ गई। पप्पू कैसा है? प्रमिला ने दूसरी बार अधीर स्वर में पूछा। उसे क्यों नहीं लाए? पृष्ठ संख्या 109। महेंद्र खाट पर बैठते हुए थोड़ी देर तक चुप रहा। पप्पू यहाँ पर नहीं है, तुम जानती तो हो। पप्पू बोर्डिंग में है। तुम मिले हो उससे? कब मिले थे? उसकी सेहत कैसी है? ठीक खाता पीता है या नहीं? महेंद्र चुप रहा। मुझे पूछता था, कहते हुए प्रमिला की आवाज़ लड़खड़ा गई। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से बोली, उसे कह दिया होता कि तेरी माँ मर गई है। तुम मुझे क्यों तड़पा रहे हो? तुम जानते हो पप्पू के बिना मैं नहीं रह सकती। मुलाकात का रुख भावुकता की ओर बढ़ रहा था। भावुकता उसे यों भी पसंद नहीं थी, लिजलिजी आंसुओं से सनी भावुकता। उसकी अपनी आंखों के सामने पप्पू का चेहरा घूम गया जब महेंद्र उसे बोर्डिंग में छोड़कर आया था। गुमसुम खड़ा पत्थर की मूरत बना उसकी ओर देखता आंखें मिचकाता रहा था, जबकि अन्य बच्चे हाथ हिला हिला कर अपने माँ बाप को विदा कर रहे थे। शुरुआत ही आंसुओं से हुई है तो आगे क्या होगा, उसने मन ही मन कहा और चुप बना रहा। पर इस शब्द का चुकने के बाद प्रमिला स्वयं संभल गई थी। अपनी भावुकता उसे भी असंगत लगी थी। वह जैसे अंदर ही अंदर समझ गई थी कि बच्चे की दुहाई देने से कुछ बने बनाएगा नहीं। वह तुम्हारी कैसी? प्रमिला ने सहसा पूछ लिया। अनजाने में महेंद्र के कान लाल हो गए और वह अटपटा सा महसूस करने लगा। वह कौन? उसने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाते हुए लापरवाही के अंदाज में पूछा। वही बंगालन। तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे क्या? उसका बाप बहुत बीमार है, वह आजकल यहाँ नहीं है, नागपुर गई है। प्रमिला की थकी थकी आंखें तनिक और खुल गईं। उसे लगा जैसे कोई दीवार गिरते गिरते रुक गई है, खड़ी रह गई है। क्या वह लौट कर नहीं आएगी? आएगी तो, मगर मुझे मालूम नहीं कब आएगी। नीचे की मंजिल से बर्तनों की खट खट के बीच किसी किसी वक्त हंसने बतियाने की आवाजें आ रही थीं। एक बार किसी बच्चे के रोने की आवाज़ पृष्ठ संख्या 110 आई, जिस पर प्रमिला का सारा शरीर झंझना उठा। प्रमिला के दिल में गहरी टीस उठी और उस घर के लोगों से उसे बड़ी ईर्ष्या हुई। कोई सुखी परिवार नीचे बसता है, उसने सोचा। यह किसका घर है? उसने फिर पूछा। मेरे एक दोस्त का, नाटे का, महेंद्र ने धीरे से कहा। प्रमिला को नाटे का नाम सुनकर कंपकपी सी हुई। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कौन हो सकता है? धीरे धीरे कदम निकट आ रहे थे। नौकर था, इन घर वालों का नौकर था। हाथ में पानी का जग और एक गिलास उठाए हुए था। शायद उसे भेजा गया था कि जाओ ऊपर देख आओ ये लोग क्या कर रहे हैं। घर की मालकिन ने, नाटे की पत्नी ने भेजा होगा ताकि दूसरे दिन चस्के ले लेकर गली मोहल्ले की स्त्रियों को बता सकें कि रात को उसके घर क्या कारगुजारियां होती रहीं। नाटे की पत्नी को इसमें क्या सुख मिलेगा? पानी लाया हूँ जी, नौकर ने कहा और पानी का जग तिपाई पर रख दिया। फिर फिर एक और, बीवी जी ने पूछा है, आप दूध पियोगे जी, दूध लाऊं जी? महेंद्र को लगा जैसे नौकर कनखियों से कभी एक की ओर तो कभी दूसरे की ओर देखे जा रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम यह पानी और गिलास छोड़ जाओ, महेंद्र ने कड़ी आवाज में कहा। नौकर ने कमरे से निकलते हुए फिर एक बार दहलीज पर से सिर घुमाकर दोनों की ओर देखा और मुस्कुराता हुआ सीढ़ियां उतर गया। महेंद्र ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। महेंद्र का पारा चढ़ने लगा था। एक दूसरे से अलग होने वाले पति पत्नी लोगों की नजरों में एक तमाशा जैसे बन जाते हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। नौकर बड़ी लापरवाही से उनके साथ पेश आ रहा था, पर प्रमिला ने नौकर की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। उसे कमरे के बाहर का अंधेरा और इस अलग-थलग कमरे में अपनी स्थिति बेहद सूनी और दुनिया से कटी-कटी सी लगने लगी थी, मानो अंधकार के अंतहीन समुद्र में यह कमरा एक डोलता हुआ द्वीप हो जिस पर वह दोनों आ पड़े हों और कहीं कूल किनारा नजर ना आ रहा हो। वह कब लौटेगी? प्रमिला ने पूछा। कौन कब लौटेगी? पृष्ठ संख्या 111, वही तुम्हारी बंगालन। तुम्हें उससे क्या? महेंद्र ने धीमे से कहा। क्या उससे ब्याह करोगे? महेंद्र तैरती सी नजर से प्रमिला की ओर देखता रहा, फिर विरक्त सी आवाज में बोला, मैं किसी से ब्याह नहीं करूंगा। एक बार ब्याह करके बहुत सुख भोग लिया है। प्रमिला अपनी खिंची खिंची आंखों से उसकी ओर चुपचाप देखती रही, मुंह से कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद महेंद्र चुपचाप उठ खड़ा हुआ और दीवार के साथ रखे अपने छोटे से बैग में से रात के कपड़े निकालने लगा। प्रमिला को लगा जैसे उसके हाथों में से स्थिति फिसलती जा रही है, उसकी पकड़ में कुछ भी नहीं आ रहा है। चाची के लिए यह कह देना कितना आसान था कि जाते ही महेंद्र से लिपट जाना, हंसकर कहना कि अब गुस्सा थूक दो, जो हो गया सो हो गया। और पिताजी तो उस वक्त तक बोलते समझाते रहे थे जब तक प्रमिला रिक्शा में बैठ नहीं गई। अगर वह नहीं माने तो उसके पाँव को पकड़ लेना, कहना मार डालो, पर घर से नहीं निकालो। प्रमिला कुछ भी कह नहीं पाई थी, कुछ करने की सूझ ही जैसे चुक गई थी। केवल सतवंत की सीख उन दोनों की सीख से अलग थी। सीधे मुंह उससे बात नहीं करना, उसे यह पता नहीं चले कि तू उससे दया की भीख मांगने आई है। पर प्रमिला चुपचाप बैठी रही। छोटे से बैग में से महेंद्र ने नीली धारियों वाला रात को पहनने वाला पायजामा निकाल कर खाट के सिरहाने रखा, फिर कुर्ता निकाला। प्रमिला के लिए ये परिचित कपड़े थे। उसके चले आने के बाद महेंद्र ने नए कपड़े नहीं सिलवाए थे। उसे यह अजीब सा लगा, घर वैसे का वैसा ही था। उसके अंदर साज सामान, कपड़े लत्ते सभी वैसे के वैसे ही मौजूद थे, केवल वह उसमें से निकल आई थी। उस घर के माहौल को क्षण भर के लिए उसके रोम रोम ने महसूस किया। तुमने क्या सोचा है, मैं घर आ जाऊं? 6 महीने तो कब के बीत चुके हैं, प्रमिला ने सहसा भावोद्रेक में कहा। महेंद्र के हाथ ठिठक गए और वह चश्मों के पीछे से प्रमिला की ओर एकटक देखते हुए धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, फीकी झूठी बौद्धिक मुस्कान। पृष्ठ संख्या 112, नहीं, उसने खड़े खड़े कहा। और फिर इस तरह मानो बंदूक दागने के बाद भी वह अविचल भाव से अपने काम में जुटा रह सकता है। उसने बैग से टूथ ब्रश और टूथ पेस्ट निकाले और सिरहाने के पास रख दिए। फिर वैसे ही आश्वस्त भाव से तिपाई पर से सिगरेट की डिबिया और दिया सलाई उठाई और सिगरेट सुलगाकर खाट पर बैठ गया। नहीं, प्रमिला की आंखें और ज्यादा फैल गई थी। तो मैं कहाँ जाऊँ? प्रमिला की आवाज में उत्तेजना बढ़ गई थी। उधर महेंद्र अंदर ही अंदर बहुत उखड़ा उखड़ा और अटपटा महसूस करने लगा था। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, उसने खोखली सी आवाज में कहा। गृहस्थी में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई है। मुझे अपनी जिंदगी का बोझ भी उठा पाना कठिन लग रहा है। किसी दूसरे की जिंदगी का बोझ मैं नहीं उठाना चाहता, उठा सकता भी नहीं। प्रमिला फिर फूट पड़े। तुम आजाद रहना चाहते हो, ताकि किसी लड़की से चाहो प्रेम कर सको, और कोई बात नहीं है, यही कह लो। महेंद्र ने पहले ही सी आश्वस्त आवाज में कहा, हम एक दूसरे से भिन्न हैं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। प्रेम क्या होता है? मुझे तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए, मैं अपने बेटे के साथ अपने घर में रहना चाहती हूँ, प्रमिला बिफर कर बोली। तुम जाओ जिसके पास जाना चाहते हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, डॉट डॉट। महेंद्र जानता था कि प्रमिला घबराई हुई है, वह यों भी उसकी बातों को नहीं समझ पाएगी। उसे समझाने का अब कोई मतलब भी नहीं रह गया है। धीरे से समतल आवाज में बोला, पप्पू घर की तुलना में बोर्डिंग स्कूल में कहीं ज्यादा अच्छी तरह रहेगा। जिस घर में पति पत्नी के विचार मेल न खाते हों और कलह रहती हो, वहां बच्चे को रखना उसके साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी करना है। रही तुम्हारी बात, मैं 100 रुपया महीना तुम्हें देने को तैयार हूँ। पप्पू की तालीम का बोझ भी मैं उठाऊंगा। फिर कष्ट लेने के बाद प्रमिला के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारे बाप ने क्या सोचा है? क्या अभी भी कचहरी में जाने का विचार है? प्रमिला को धक्का सा लगा। तुम बाप बाप क्यों कहते हो, पिताजी क्यों नहीं कहते? पृष्ठ संख्या 113। प्रमिला ने आंख उठाकर देखा, सिगरेट वाला हाथ होठों पर रखे महेंद्र अधमुंदी आंखों से उसकी ओर देखे जा रहा था। जब कहा करता था तो कहा करता था, पप्पू को तुम मुझे दे दो, मैं और कुछ नहीं मांगती। अगर तुमने घर तोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हारी खुशी, पर मैं पप्पू को नहीं छोड़ सकती। प्रमिला की आवाज़ अनजाने में ऊंची हो गई थी। तुम उसकी पढ़ाई का क्या करोगी? डॉट डॉट तुम्हारे पास रहकर वह 2 कौड़ी का हो जाएगा? मैं उसकी माँ हूँ, बच्चे सदा माँ के पास पलते हैं। मैं अपने को सुधार लूंगी, मैं भी तो उसका भला चाहती हूँ। वह रहेगा कहाँ? महेंद्र ने व्यंग्य भरी मुस्कुराहट से कहा, तुम्हारे घर में? प्रमिला हतबुद्धि सी महेंद्र के चेहरे की ओर देखने लगी। फिर उसे अपने पिता का सुझाव याद हो आया, बोली, तुम अपने ही घर के बीचों बीच दीवार खिंचवा दो, मुझे अलग कर दो। बेशक पप्पू तुम्हारे पास रहे, मैं दीवार के एक ओर पड़ी रहूंगी, तुम दूसरी ओर। पप्पू को लेकर रहना, जैसा मन आए रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं पप्पू की आवाज़ तो सुन सकूंगी। महेंद्र अवाक सा प्रमिला के चेहरे की ओर देखने लगा। प्रमिला कहे जा रही थी, पिताजी भी कचहरी में नहीं जाना चाहते, उन्होंने भी यही सुझाव दिया है। महेंद्र व्याख्या किसी आवाज़ में बोला, मेरी विवाह में या घरेलू जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। तुम भी आज़ाद रहो, पप्पू बोर्डिंग स्कूल में रहे, उसका खर्च मैं दूंगा, तुम्हें भी 100 रुपया महीना दूंगा। प्रमिला फिर बिफर उठी। मुझे बार बार नहीं कहो, उसने चिल्ला कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ उस काली कलूटी के पास, मुझे मेरा बच्चा दे दो, उसके बिना मैं मर जाऊंगी, पप्पू के बिना मैं मर जाऊंगी। प्रमिला की आवाज़ ऊंची उठने लगी। महेंद्र को लगा जैसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ने वाला हो, पर वह निश्चेष्ट बैठा रहा। पहले प्रमिला जब यूँ चीखती चिल्लाती थी तो महेंद्र के दिल पर भी झिल्ली कड़ी होने लगती थी, उसकी धृष्टता बढ़ने लगती थी, तब भले ही वह गिड़गिड़ाती। पृष्ठ संख्या 114। रहे या चीखती चिल्लाती रहे, महेंद्र पर कोई असर नहीं होता था। इसी धृष्टता को वह अपने चरित्र की दृढ़ता माना करता था, पर आज वह बड़ा खोया खोया और अटपटा महसूस कर रहा था। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना, महेंद्र ने कहा, रात बहुत हो गई है, अगर कुछ कहने को हुआ तो सुबह बात करेंगे। और वह उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। पीछे से फिर प्रमिला की सुबकती सी आवाज़ आई, अगर तुम मुझे घर में नहीं रखना चाहते हो तो नहीं रखो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम पप्पू को भी ले गए हो, प्रमिला बच्चे की तरह बिलखे जा रही थी। तुम पप्पू को मुझे दे दो, मैं जहाँ कहोगे चली जाऊँगी, मेरा साया भी तुम्हारे घर पर नहीं पड़ेगा। सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं तुमसे कुछ मांगूंगी भी नहीं। महेंद्र खिड़की के दासे पर पैर रखे बाहर की ओर देखता हुआ सुने जा रहा था। प्रमिला की आवाज़ में उसे भोलेपन का स्वर बार बार सुनाई देने लगा था। मारो गोली, इसे बुला लो वापस, चलने दो जैसे गृहस्थी चलती है, पप्पू को तरसती है, या पप्पू के इसके हवाले कर दूं और ख़त्म करूं किस्सा। फिर झट से मन ही मन बोला, नहीं नहीं इस वक्त डटे रहो, फिर से पैरों में जंजीरें पड़ जाएंगी, एक बार फंस गया तो फिर कभी भी निकल नहीं पाऊंगा, फिर से वही घिस घिस शुरू हो जाएगी, वही बोझिल नीरस जिंदगी फिर शुरू हो जाएगी, शिकायतें उपदेश रोना धोना। महेंद्र की नज़र नीचे रेलवे यार्ड पर पड़ी। यार्ड पर निस्तब्धता छाई थी, शंटिंग करने वाले इंजन से भी अब भाप के बवंडर नहीं निकल रहे थे, केवल रोशनी के कुमकुमे और उनके नीचे लंबी रेल लाइनों की रेखाएं दूर तक खिंची थीं। उसे लगा जैसे सारा माहौल स्थिर हो गया है, एक अवसादपूर्ण चुप्पी जिसमें कुछ है जो अंदर ही अंदर चाटने सा लगा है, अकुलाहट भरी चुप्पी। बहुत दूर एक सिग्नल की ओर से बौना लाइनमैन हरा लाल लैंप झुलाता हुआ वापस लौट रहा था। यहाँ से केवल उसका झूलता लैंप ही नज़र आ रहा था। बहुत से इंजन शांत थे, लगता था खड़े खड़े जड़ हो गए हैं। रात का सन्नाटा सारे यार्ड पर उतर आया था। उसे अकलाहट हुई, उसे लगा जैसे वह निपट अकेला है, बरसों से अकेला है, कि उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। महेंद्र मन में जो निश्चय करके आया था उस पर डटा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में जड़ता आती जा रही थी। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। बाहर रेलवे यार्ड में सहसा हरकत हुई। एक गाड़ी मुसाफिरों से भरी धीरे धीरे पृष्ठ संख्या 115 प्लेटफार्म पीछे छोड़कर यार्ड के किनारे किनारे सिग्नलों की ओर बढ़ रही थी। महेंद्र की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो गाड़ी के साथ साथ धीरे धीरे भागता जा रहा था और डिब्बे की खिड़की में से सामान की छोटी छोटी चीज़ें अंदर फेंक रहा था। फिर खिड़की में से किसी स्त्री का सिर बाहर निकला। उसके सिर पर से साड़ी का पल्लू उतरा हुआ था और वह हाथ हिला हिला कर बड़ी घबराहट में उस आदमी को गाड़ी में चढ़ आने का आग्रह कर रही थी। फिर वह आदमी उछक कर पिछले डिब्बे के पायदान पर चढ़ गया था और हंसे जा रहा था। स्त्री अपने डिब्बे की खिड़की में से सिर निकाले अभी भी उसकी ओर देखे जा रही थी और हाथ हिला हिला कर उसे अंदर चले आने का आग्रह कर रही थी। महेंद्र को यह दृश्य बड़ा भला लगा। रात के सूनेपन में जैसे स्निग्धता भर गई हो। क्षण भर के लिए उसके मन में वर्षों पुरानी एक याद कौंध गई। वह भी एक दिन इसी तरह चलती गाड़ी के साथ साथ भागता रहा था और गाड़ी में बैठी प्रमिला की ओर एक एक करके संतरे फेंकता जा रहा था। वह शादी के शुरू के दिन थे और प्रमिला अकेली गाजियाबाद से लौट रही थी और उसे मालूम नहीं था कि महेंद्र भी इसी गाड़ी में सफ़र कर रहा है। और जब प्रमिला ने उसे देख लिया था तो झट से खिड़की में से सिर बाहर निकाल कर घबराहट में छटपटाती हुई सी बार बार हाथ हिला हिला कर गाड़ी में चढ़ आने का आग्रह करती रही थी। तब पहली बार अजीब सी सौगंध उसने प्रमिला के मुंह से सुनी थी, मेरा गड़ा मुर्दा देखो जो फिर गाड़ी में से कभी उतरो तो। और वह देर तक हंसता रहा था डॉट डॉट। उसने खिड़की में से सिर निकाल कर बाहर देखा, गाड़ी दूर जा चुकी थी पर वह मुसाफिर अभी भी पायदान पर खड़ा था और उसकी पत्नी खिड़की में से सिर निकाले अभी भी हाथ हिलाए जा रही थी। तभी उसे अपनी स्थिति का बोध हुआ। वह देर से प्रमिला की ओर पीठ मोड़े खड़ा था। प्रमिला चुप थी, शायद रोध होकर चुप हो गई थी। अब वह आग्रह नहीं करेगी, मगर वह इतनी चुप क्यों है? क्या वह कमरे से बाहर निकल गई है? क्या वह कहीं सीढ़ियां तो नहीं उतर गई? इस अंधेरी रात में कहाँ निकल गई है? उसने मुड़कर देखा, प्रमिला खाट के बीचों बीच पालथी मारे बैठी थी और सदा की भांति गोद में दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी। प्रमिला का कांतिहीन चेहरा तनिक झुका हुआ था, बालों की एक रुखड़ी सी लट बेतरह से माथे पर झूल रही थी जैसे सदा झूला करती थी। साड़ी का पल्लू कंधों पर से फिसल गया था। पृष्ठ संख्या 116। महेंद्र अवाक सा उसकी ओर देखता रह गया। आज भी प्रमिला को प्रार्थना करना है? महेंद्र को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूटा है। एक अनूठी सी भावना का ज्वार उसके अंदर उठा। प्रमिला का यों इस जगह बैठकर प्रार्थना करना उसे झकझोर गया। क्या यह इस स्थिति में भी प्रार्थना कर सकती है? यह किस मिट्टी की बनी है? क्या अब भी अपनी प्रार्थना में यह मेरे सुख की कामना करेगी? मेरे सुख की, पप्पू के सुख की और अपने मित्र संबंधियों के सुख की? प्रमिला की देह थकी थकी शिथिल सी लग रही थी। गालों पर के दो चित्ते आंखों के बंद होने के कारण ज्यादा बड़े बड़े लग रहे थे। उसके होठ हौले हौले हिल रहे थे। वह प्रार्थना के रटे रटाए शब्द बुदबुदा रही थी। अनायास ही महेंद्र धीरे से आकर प्रमिला की खाट की पाटी पर बैठ गया और हाथ बढ़ाकर प्रमिला के माथे पर झूलती बालों की लट को दाएं कान के पास बालों में खोंस दिया। प्रमिला ने सिहर कर आँखें खोल दी। वह अपनी प्रार्थना में गहरी डूबी हुई थी। महेंद्र की ओर नज़र उठाने के बाद उसने फिर एक बार आंखें बंद कर ली, लेकिन तुरंत ही उन्हें फिर खोल दिया और हड़बड़ाकर महेंद्र की ओर देखने लगी। तुम प्रार्थना करो, मैंने यूं ही, मेरा कोई मतलब न था डॉट डॉट, महेंद्र ने कहा और उठ खड़ा हुआ। कमरे में सर्दी है, ठहरो, मैं पिछला दरवाज़ा बंद कर देता हूँ डॉट डॉट। वह उठा और बरसाती के पीछे गली की ओर खुलने वाले दरवाजे को बंद कर दिया और लौटकर उसी भावोद्रेक में डूबा, दोनों खाटों के बीच ठिठका हुआ रहा। फिर उसने झुककर साड़ी के पल्लू से प्रमिला की पीठ और कंधे ढक दिए। प्रमिला अभी भी सिर झुकाए बैठी थी, तभी महेंद्र ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। प्रमिला ने गहरी सांस खींची और बच्चे की तरह सुबक उठी। तुम बहुत बुरे हो, उसने बिगड़ते हुए महेंद्र के कंधों पर अपना सिर रखते हुए कहा। भला अपनी घरवाली को भी कोई तड़पाता है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और बार बार अपने हाथों से उसके कंधे पकड़ती हुई सी बोलती गई, सच तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं बोलूंगी। और उसने गहरी सांस खींची जिससे उसका अंग अंग कांप गया। प्रमिला के शरीर में महेंद्र को असीम स्निग्धता का भास हुआ। उसे लगा जैसे उसकी छटपटाहट शांत हो रही है। प्रमिला के स्निग्ध अलसाए शरीर में उसे एक प्रकार का त्राण मिल रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी भटकन खत्म हो रही है। प्रमिला के अंग अंग में एक प्रकार की आत्मीयता थी जो महेंद्र के मन को पृष्ठ संख्या 117 स्थिरता देती जान पड़ रही थी। क्षण भर के लिए महेंद्र की चेतना जागी। दूर अंदर से कहीं छिड़ सी आवाज आई, यह तुम किस ओर बढ़े जा रहे हो? इस ओर तो गहरी खाई है, उसमें गिरे तो जीवन भर उसमें से निकल नहीं पाओगे। लेकिन भावुकता का ज्वार बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि यही प्रवास सब कुछ है। उसकी नीलम धारा इतनी सुहावनी, इतनी प्रबल थी, लगता था जीवन की सभी विषमताएं इसमें डूबती चली जा रही हैं। प्रमिला भाव विह्वल हो उठी थी। किसी किसी वक्त वह लंबी सांस खींचती, कभी हल्की रुदन की सी कांपती आवाज उसके होठों में से निकलती, पर महेंद्र की बाहों में वह सिमटती जा रही थी। तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम कुछ भी कहते क्यों नहीं हो? उसने फुसफुसा कर कहा। तभी महेंद्र के अंदर से फिर हल्की सी आवाज आई, अभी भी वक्त है, इसमें से निकल आओ। प्रमिला जो कुछ भी समझ रही है गलत समझ रही है, उसे भ्रम में मत रखो, बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। पर जैसे भावुकता की एक और लहर आई और इस छीण दुर्बल आवाज को रौंद गई। प्रमिला के शरीर के साथ अनगिनत स्मृतियां गुथी थीं। महेंद्र भावना के उस स्तर तक जा पहुंचा जिसमें संशय, संकोच, तर्क, विवेक सभी के बंध ढीले पड़ जाते हैं। केवल लहरों ही लहरों का भास होता है और मनुष्य चाहता है उन्हीं में डूबा रहे, उन्हीं में खोया रहे। डॉट डॉट जानते हो, प्रमिला चहकती कांपती आवाज में कह रही थी, मैं पूरे 1 लाख बार गायत्री का जाप करके आई हूँ, मुझे जाप फल गया है। मैं नहीं मानती थी, पर चाची बार बार मुझे आश्वासन देती थी। उसे यकीन था कि जाप से दिल की मुराद पूरी हो जाती है। तुम बोलते क्यों नहीं? आज बहुत प्रेम आया है मुझ पर। भावना और वासना की लहरें एक के बाद एक उठती चली जा रही थी और महेंद्र उनमें डूबता चला जा रहा था। डॉट डॉट पौ फटने को थी जब महेंद्र दोनों हाथ सिर के नीचे रखे छत की ओर ताके जा रहा था। उसका मन फिर से विचलित हो उठा था। प्रमिला का सिर महेंद्र की छाती पर था और उसका एक हाथ उसके कंधे पर, और वह गहरी नींद सो रही थी। इतनी गहरी नींद प्रमिला बहुत दिनों बाद सोई थी। पृष्ठ संख्या 118। भावुकता और वासना का ज्वार उतर चुका था और महेंद्र की आंखों के सामने जिंदगी के नुकीले पत्थर, टेढ़े मेढ़े ठूंठ, कीच, चट्टाने फिर से अपनी सारी कुरूपता लिए नजर आने लगे थे। जीवन फिर से जटिल हो उठा था। सबसे पहले उसकी आंखों के सामने वह दीवार आई जिसका आग्रह प्रमिला ने किया था। ऊंची लंबी दीवार जिसमें न खिड़की थी न कोई झरोखा, सपाट सीधी और ऊंची दीवार। उसकी कल्पना करते ही महेंद्र का दम घुटने लगा। उसे जान पड़ा जैसे दीवार खींच देने से वह किसी जेलखाने में बंद हो जाएगा, और दीवार खींचने का मतलब ही उसे बंद करना था। यह सब जाल था जिसमें उसके वकील बाप ने मुझे फंसाने की कोशिश की है, और मैं पागलों की तरह इस जाल में कूद गया हूँ। कचहरी में जाए बिना ही ये लोग कामयाब हो गए हैं। उसकी आंखों के सामने वही गृहस्थ जीवन घूम गया जिससे इतनी मुश्किल से उसने पिंड छुड़ाया था। वही घिस घिस, चिख चिख, वही बर्तनों की खट खट, वही शिकायतें, वही गला सड़ा रिश्ता, वही गृहस्थी की सडांध जिससे उसे इतनी अधिक घृणा थी, वही बोझिल नीरस सी जिंदगी फिर से आ जाएगी, वही जड़ता, वही बकझक। लोगों के सिखलाने पर सारा वक्त प्रमिला स्वांग भरती रही थी और अब निश्चिंत सोई पड़ी है, जबकि वह मूर्खों की तरह उस जाल में कूद गया है। उसने सिर के नीचे से दोनों हाथ निकाले और प्रमिला का सिर दोनों हाथों से लेकर छाती पर से हटा दिया और स्वयं अलग हो गया। वह बेहद परेशान हो उठा था। प्रमिला गुनगुनाई जैसे बच्चे गुनगुनाते हैं। उसने गहरी सांस ली, कुछ अस्फुट से शब्द भी बुदबुदाई, पर सिरहाने पर सिर पड़ते ही फिर गहरी नींद सो गई। लेकिन महर देर तक आंखें फाड़े छत की ओर ताकता और अपनी विषम स्थिति की कल्पना से छटपटाता रहा। जब प्रमिला जागी तो कमरे में धूप खिली थी। अलसाहट में लेटे ही लेटे इधर उधर देखने के बाद अपने को अपरिचित कमरे में पा वह जम्हाई लेकर उठ बैठी। उसे याद आया वह कहाँ है। उसने महेंद्र की खाट की ओर देखा, खाट खाली थी। महेंद्र का बैग भी वहाँ नहीं था, जिसे उसने अपनी खाट के सिरहाने की ओर फर्श पर रख छोड़ा था। महेंद्र का कहीं नाम निशान नहीं था। वह भागकर गुसलखाने में गई, महेंद्र वहाँ पर भी नहीं था। वह लपक कर मुंडेर की ओर गई, फिर देर तक खिड़की में से रेलवे यार्ड की ओर झांक झांक कर देखती रही। उसे लगा जैसे रात भर सपना देखती रही है। थोड़ी देर बाद जब घर का नौकर चाय के बारे में पूछने आया तो प्रमिला फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखती रह गई।